તારીખ 21/3/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 312 313 અને 314 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન પ્રવચન નંબર 246
ગુજરાતીમાં મૂંઝવણ શબ્દ છે સમાધાન સ્વયં માર્ગ નિકાલતા જાતા પોતે જ માર્ગ કાઢતો જાય ઉલઝન આયે બિના માર્ગ કી ઇતની ખોજ ચલેગી નહીં. બાત ક્યા હૈ કે ઉલઝન આયે બિના માર્ગ કે લીએ ઉતની જિજ્ઞાસા ઉતની ભાવના ની તડપન આયેગી નહીં. ઓર આયેગી નહીં તો ખોજેગા નહીં, ઢૂંઢેગા નહીં, દૂસરે દૂસરે ઉદય કે કાર્ય મેં રસ લેતે રહેગા. એસા જીવ કા પરિણામ હોતા હૈ. ઇસલિયે ઉલઝન આતી હૈ તો સ્વયં માર્ગ નિકાલતા જાતા હૈ. જૈસે બહારી કઠિનાઈઓ મેં સે માર્ગ નિકલતા હૈ, વૈસે હી અંતર મેં ભી સ્વયં માર્ગ નિકાલતા જાતા હૈ. બહારમાં પણ જેમ જેમ જરૂર પડે, જૈસે જૈસે જરૂરત લગતી હૈ, કઠિનાઈ લગતી હૈ, તો ઉસકા રાસ્તા નિકલતા હૈ, એસા બનતા હૈ. એક જમાને મેં રાત કો અંધેરા હોને સે કોઈ ઉજાલા કી વ્યવસ્થા નહીં થી પ્રકાશ કે, તો મિટ્ટી કે તેલ કી ખોજ હુઈ, ગેસ તેલ. મિટ્ટી મેં ભી તેલ હોતા હૈ, વો બાત એસે સીધી સાદી સમજ મેં નહીં આતી. લેકિન જરૂરત હોતી હૈ તો ચિકનાપન મિટ્ટી મેં દેખ કરકે ઉસમે સે ભી તેલ નિકાલે, ચિકની મિટ્ટી મેં સે. ફિર આગે જૈસે જૈસે જરૂરત ઓર સુવિધા કી આવશ્યકતા લગી, તો આજ દેખો પ્રકાશ કે લીએ કૈસી કૈસી વ્યવસ્થા હુઈ હૈ. ઇધર ચાંપ દાબો લાઇટ હો જાયેગી, રિમોટ સે લાઇટ હોતી હૈ. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ મેં તો વો બાત હૈ, બહાર સે ગાડી મેં આતે હૈ અપને ઘર પે, તો ગાડી મેં બેઠે બેઠે રિમોટ કા બટન દબાઓ, કમ્પાઉન્ડ કી દરવાજે કી ગેરેજ કી સબ લાઇટ હો જાયેગી. ગેરેજ ભી અપને આપ ખુલેગા, દરવાજા ભી અપને આપ ખુલેગા, સબ હોતા હૈ. યે ભૌતિક સંશોધન હુઆ, ખોજ હુઈ, જરૂરત જૈસે લગી વૈસા. એસે આત્મ શાંતિ કી જરૂરત લગે પર નહીં મિલે તો ઉલઝન તો હોગી, ઓર ઉલઝન હોગી તો માર્ગ નિકલેગા, ઉલઝન નહીં હોગી તો માર્ગ નહીં નિકલેગા. યે પરિભ્રમણ કી ચિંતના વો ઉલઝન હી હૈ ઓર ક્યા હૈ. પરિભ્રમણ મિટાના હૈ, સંસાર કે દુઃખ નહીં ચાહીએ, તો ઇસકે લીએ ચિંતા હોગી તો માર્ગ નિકલેગા, ઉપાય હોગા. ચિંતા હી નહીં હોગી તો ઉપાય કે લીએ કોઈ પ્રયત્ન નહીં હોગા જીવ કા. ઇસલિયે વો જરૂરી હૈ. નેસેસિટી ઇઝ ધી મધર ઓફ ઇન્વેન્શન. બૌદ્ધિક સ્તર પર ભી વો બાતો સમજી ગઈ હૈ. ઇધર યે બાત ક્યો સમજ મેં નહીં આતી હૈ, એક આશ્ચર્ય કી બાત હૈ. નહીં સમજ મેં આતી ઇસકા કારણ વો હૈ કે દર્શન મો તગડા હૈ. કોઈ સીધી સાદી બાત ભી સમજ મેં નહીં આતી. કે किसी विकल्प जाल में न उलझकर दूसरे विकल्प जाल में नहीं उलझ करके सिर्फ मार्ग की खोज चले, उपाय की खोज चले कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं, कैसा उपाय करूं कि जिससे मेरा आत्मकल्याण हो जाए और मेरा परिभ्रमण का नाश हो जाए। ऐसे दूसरे विकल्प जाल में नहीं उलझ करके स्वयं मार्ग निकाल कर चैतन्य का अभ्यास कैसे बढ़े वह प्रयत्न करना, वो भी दिखा दिया कि दूसरे उदय में से निरस होकर के नहीं उलझ कर उलझवू टपड़वू रस्थी पड़वू, यानी हिंदी में उलझवू कैसे, स्वयं मार्ग निकाल कर चैतन्य का अभ्यास कैसे बढ़े। चैतन्य का मैंने आत्म अनुभव का अभ्यास कैसे बढ़े ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, किसी विकल्प जाल में नहीं मुन जाता। ठीक है, आपदा जुदा जुदा विकल्पों में मुंझाई जाए छे ने, तत्वज्ञानना विषय में भी अनेक प्रकार के विकल्प में आ जाते, इसका क्या करे, इसका क्या करे, उसका क्या करे, मुझे को ऐसा भाव होता है, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा, छोटे मोटे कई प्रकार के परिणाम के अलग अलग समाधान और मार्ग खोजते हैं। ऐसे उलझना नहीं है, एक सही उपाय को पकड़ करके फिर आत्मस्वरूप का अनुभव का अभ्यास करें। वो अभ्यास कैसे बढ़े ऐसा प्रयत्न करना, और संक्षेप में बात को लिया है। ये अकाल पड़ता है, दुष्काल, तो क्या होता है, छोटे छोटे गांव में कोई व्यवस्था नहीं होती पानी की, कुएं में पानी नहीं निकलता, जो मिलता था वो बंद हो जाता है क्योंकि नया पानी गिरा नहीं, ऊपर से पानी जो अंदर जाता है कुआं में वो आने का बंद हो गया, पानी बिना तो चलेगा नहीं। तो उसी वक्त कुआ वाव तालाब की खुदाई चालू होती है। जब तक पानी आसानी से मिलता था कोई तालाब वालाब नहीं खोदते थे, और एक साल दुष्काल हुआ, गांव के लोगों ने स्वयं मजदूरी करके खोद लिया, तो हमेशा की व्यवस्था हो गई, पानी स्टोरेज होने लगा। मतलब क्या होता है कि जब तकलीफ पाता है, कठिनाइयां आती है, तो मार्ग निकालता है। संसार में भी वही होता है, कठिनाइयों में से मार्ग निकालता है। वैसे अपने को अशांति की कठिनाई लगनी चाहिए, बस वो बात है। संसार के दुख है, आकुलता के दुख है, टेंशन के दुख है, विकल्प के दुख है, वो मालूम पड़ना चाहिए कि हमको ये नहीं चाहिए, इसका कोई रास्ता अवश्य निकालना चाहिए, तो निकलता है। दुख नहीं लगता है, इसका कोई उपाय नहीं है, देखो हमको तो अनुकूलता है, तो उसका प्रयत्न नहीं चलेगा, इस विषय में उसका प्रयत्न नहीं चलेगा। ये 312 हुआ, 313 ज्ञानी होने के बाद यह खबर पड़ती है कि अब फिर कब निर्विकल दशा आएगी, कुतूहल है ये प्रश्नकार का कुतूहल। खुद को तो अभी बहुत काम बाकी है, अब ज्ञानी की दशा का प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करके जीव कुतूहल वृत्ति को बढ़ा करके अप्रयोजनभूत विषय में जानकारी लेने का बहुत मन करता है, तो बिना प्रयोजन के प्रश्न उनको उठते हैं और उनका समाधान वो खोजता है। इससे कोई फायदा था ही नहीं। लेकिन सही रास्ते पे नहीं आता, सही काम पे नहीं लगता, तो फिर इधर उधर उपयोग गए बिना नहीं रहता। प्रश्न ठीक है, बीच में आया है तो थोड़ा ले ले, बाकी कोई जरूरत की बात नहीं है। हाँ, वो बात समझ में आएगी, उसमें अपने को कोई इस बात समझने की है तो वो बात समझने की आएगी कि निर्विकल्प दशा जो, देखो समाधान में क्या कहा, निर्विकल्प दशा इस समय होगी अथवा कब होगी ऐसे विकल्प होते ही नहीं ज्ञानी को। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सहजता में चलते हैं, तो जो सहजता का पहलू है ज्ञान दशा में वो समझ में आएगा। क्यों कि वो कृत्रिमता में जाते नहीं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, आएगी जब आएगी, विकल्प नहीं होता कि कब आएगी। जबकि जिसको निर्विकल्प दशा नहीं आई है और यथार्थता में नहीं है, उनको ऐसे विकल्प होते रहते हैं कि मेरे को निर्विकल्प दशा कब आएगी, मुझे निर्विकल्प दशा कब आएगी, ये बात उन लोगों को होती है। तो उनके लिए समझने लायक बात हो गई कि देखो ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है। यथार्थ कार्य पद्धति में जो लगे उनको ये दशा सहज अपने स्वकाल में आने वाली है, इसके लिए कोई विकल्प करने से फायदा नहीं है। और विकल्प करने से कुछ काम होता है कि कब आएगी कैसे आएगी, वो भी होने वाला नहीं है। मुमुक्षु जीव को तो पर्याय दृष्टि का अभाव करना है। पर्याय दृष्टि का अभाव करना माने पर्याय पर का वजन उठा लेना है, तभी तो द्रव्य दृष्टि प्रकट होगी और द्रव्य का आश्रय होगा। अब ऐसे प्रश्न करने से तो पर्याय का वजन तो और बढ़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न से पर्याय का जो वजन है, पर्याय पर जो वजन है वो तो और बढ़ जाएगा। क्या फायदा, और ज्ञानी भी उस पर वजन नहीं रखते हैं, क्योंकि तो वजन रखते तो विकल्प उसको भी होता, उसको विकल्प होते ही नहीं, इसका क्या कारण। ज्ञानी को निर्विकल्प दशा का विकल्प नहीं होता, इसका क्या कारण, तो उसका वजन तो द्रव्य पर है, फिर पर्याय की चिंता का है क्यों। पर्याय की चिंता करने की उसको जरूरत नहीं है। पर्याय जहां से जन्म लेती है निर्विकल्प दशा। इससे अनंत गुण अनादि अनंत निर्विकल्प स्वरूप तो खुद ही है और दृष्टि ने उसका कब्जा ले लिया, फिर निर्विकल्प दशा की चिंता क्यों? वो कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास संपत्ति है उसको ऐसा विकल्प आता है कि मैं ये पैसा का उपभोग कब करूंगा, मैं कब खर्चा करूंगा, मैं कब वापरूंगा। हाँ, अपने पोजेशन में चाहे चलते हैं, चाहे तो हो सकता है, उसको वो विकल्प बार बार आता नहीं है। वो तो वो में उसको अच्छा लगता है, बहु भाग तो खर्च करना चाहता भी नहीं है क्योंकि इसकी हूफ अच्छी लगती है, क्योंकि खर्च करने में कम हो जाता है। यहाँ तो कम होता नहीं है, और दशा आती है तो सहज आती है, विकल्प करने से आती नहीं। ऐसी वस्तु स्थिति को वो जानते हैं। पर्याय की चिंता करने से, निर्विकल्प पर्याय की चिंता करने से निर्विकल्प पर्याय आती नहीं, आ सकती नहीं, वो चिंता बेकार है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। निर्विकल्प दशा की चिंता से निर्विकल्प दशा तो आने वाली है ही नहीं, वो अच्छी तरह वो जानते हैं, तो उसका वो विकल्प करते नहीं, उसका विकल्प उनको होते नहीं। अपनी परिणति को स्वयं अंतर्मुख करके स्वरूप की लीनता का प्रयास करता है, उसमें उसका ध्यान काल के ऊपर, उसमें उसका ध्यान काल के ऊपर अथवा कब होगी उस पर नहीं होता। जो काम में लगे हैं बस, वो काम अपना प्रयत्न में लगे हैं, प्रयास करता है, प्रयास चालू है, कब होगी ऐसा ध्यान करते नहीं, काल पर ध्यान जाता नहीं। ऐसी सहज बात है, वजन जाता है उस स्वरूप पर जाता है और स्वरूप का आश्रय का प्रयास चालू रहता है। सहज है वो प्रयत्न भी, सहज है। परिणति ने, वो दृष्टि ने स्वरूप का आलम्बन तो लिया हुआ है ही, सविकल्प दशा में भी आलम्बन सर्वथा छूटा नहीं, वो तो आलम्बन लिया हुआ है ही। वो आलम्बन में उग्रता जब आती है तब निर्विकल्प दशा आ जाती है, और वो उग्रता सहज आती है, कोई कृत्रिम विकल्प से उग्रता नहीं आती। ऐसा एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 144 के वचनामृत में सुगनी जी ने दिया है। रिएक्शन जल्दी पुस्तक निकल सकते अपना मंदिर में पड़ गया। निर्विकल्प ध्यान के पहले, ध्यान मैंने दशा, निर्विकल्प ध्यान के पहले अनेक प्रकार का चिंतन घंटों तक चले, वो तो बहुत बैठक बैठते थे ना, 2-4, 5, 6 घंटे बैठते थे, तो घंटों तक चिंतन चलते थे, स्वरूप का ही चिंतन चले। फिर भी यह चिंतन, यह विकल्प निर्विकल्पता का कारण नहीं है। निर्विकल्प दशा की चिंता तो करते ही नहीं ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी ध्यान में बैठते हैं तो उसको भी स्वरूप का चिंतन चलता है, स्वरूप के विकल्प आता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। फिर भी वो चिंतन और वो विकल्प निर्विकल्पता का कारण नहीं है। तो फिर वो क्या है कि वह तो अटकाव है। निर्विकल्प होने में वो बाधक है, स्वरूप का चिंतन भी निर्विकल्प होने में बाधक है। तो निर्विकल्प दशा की चिंता तो निर्विकल्प होने में बाधक है ही। बहुत सूक्ष्म बात लिया है, निर्विकल्पता तो अंदर में उग्र अवलंबन से ही होती है। क्या अवलंबन है, वो अवलंबन उग्र हो जाता है तब निर्विकल्पता होती है, विकल्प से नहीं होती, चिंतन से नहीं होती। विचार रूप ध्यान यानी विचार रूप जो दशाएं हैं, ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान बोल दिया, वो तो अटकाव है, होता है निर्विकल्प नहीं होता, दशा होती है वहां तक ये होता है, आ जाता है, लेकिन वो आलंबन नहीं है, वो विकल्प है, वो आलंबन नहीं है। गुण भेद से अगर समझे तो विकल्प है, चिंतन है, वो चारित्र गुण की पर्याय है, वहां सूक्ष्म राग है। सिद्धांत वो है कि राग से वितरागता नहीं होती, राग कारण और वितरागता कार्य, ये न्याय संगत नहीं है, न्याय विरुद्ध है। स्वविकल्प कारण और निर्विकल्पता कार्य, ये न्याय संगत नहीं है, न्याय विरुद्ध है। अब ये जवाब मिला, टोडरमल जी का वो लिया है ना, स्वविकल्प पूर्वक निर्विकल्प दशा का वो पकड़ लिया है ना पदम पंजन, देखो यहाँ विकल्प से निर्विकल्प हुआ जाता है, विकल्प से निर्विकल्प हुआ जाता है, यहाँ कहते हैं सोगानी जी ना बोलते, ध्यान नहीं गया उसका। दृष्टि प्रकाश तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं गया है। तद्रूप तो आलम्बन उग्र आवे तो अच्छा तो अच्छा है, तो ये तो पढ़ते हैं बहुत इस ग्रंथ को, लेकिन अपना प्रयोजन की बात पर ध्यान नहीं जाता है। बहुत स्पष्ट लिखा है तो वो विचार विकल्प ध्यान तो अटकाव है, रुकावट है। क्या है वो? तो रुकावट है, निर्विकल्पता में वो रुकावट है, होता है, आ जाता है, लेकिन वह अवलंबन नहीं है, क्योंकि वो तो चारित्र गुण की पर्याय है। उसने तो मन का अवलंबन लिया है, स्वरूप का कहाँ लिया है? जितना भी चिंतन है, विकल्प है, उसका मन का, उसको मन का अवलंबन है, स्वरूप का अवलंबन है ही नहीं। श्रद्धा में, ज्ञान में, पुरुषार्थ में जो स्वरूप का अवलंबन लिया है, उसमें वीर्य गुण के पर्याय में उग्रता आती है, यानी पुरुषार्थ तेज होता है तब उग्र रूप से आलंबन हो जाता है। तो गुण भेद से पुरुषार्थ काम करता है, चारित्र गुण का राग काम नहीं करता, ये बात है। वो अवलंबन नहीं है, वो विकल्प है, वो अवलंबन लेता नहीं है। अवलंबन तो अंदर में लिया हुआ है, परिणति ने तो लिया हुआ है, अंतर परिणति है, उसने अवलंबन तो लिया हुआ है, उसमें ही उग्रता होने पर निर्विकल्पता होती है, वो परिणति उग्र हो जाती है, तो ये उपयोग को खींचती है। जो उपयोग बाहर गया उसको खींचने वाला कौन है? परिणति, परिणति साधन है। तो परिणति ने अवलंबन लिया हुआ है, वो परिणति उग्र होती है, तो जो उपयोग बार गया, जैसे डोरी से पतंग को खींचा जाता है, वैसे परिणति रूप डोरी है, वो उपयोग को अंदर में ले आता है, ले आती है, उसमें ही उग्रता होने पर निर्विकलता होती है। यदि अटकाव रूप विचार, वो विचार क्या है? अटकाव रूप विचार है, रुकावट है, उसको कारण माना जाए तो विचार से छूटकर अंदर आ ही नहीं सकते, उसको साधन माना जाए, उसको कारण माना जाए, तो ये विकल्प, ये विचार छूटने वाले है ही नहीं। ये अगर वो साधन है तो उसको क्यों छोड़े? तो वो तो साधन है ही नहीं, तो अंदर आ ही नहीं सकते। इन्हें अटकाव मानने पर अंदर जा सकते हैं, उसको तो रुकावट मानना चाहिए, तभी अंदर आ सकते हैं। मंद शक्तिवश पर्याय में अनेक तरह का विचार चलता है, मंद शक्तिवश कहो या मंद पुरुषार्थ के कारण से कहो, पर्याय में अनेक तरह का विचार चलता है। पुरुषार्थ की मंदता शुभोपयोग का कारण है ज्ञानी को। ये विषय लिया है प्रवचन सार के तीसरे अधिकार में, चरणानुयोग का अधिकार है, चरणानुयोग सूचक चिल्लिका 254-55 गाथा में वो बात की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने प्रवचन सार में की है कि साधक का, ज्ञानी का, मुनि का मंद पुरुषार्थ शुभोपयोग का कारण है और तीव्र पुरुषार्थ शुद्धोपयोग का कारण है। ये कार्य वीर्य गुण का है, चारित्र गुण का नहीं। कारण पुरुषार्थ है, कारण वीर्य गुण का परिणमन है और कार्य आता है चारित्र में, राग मिट करके वितरागता होता है, वितरागता होती है, और शुभोपयोग बदल करके शुद्धोपयोग होता है। तो इन्हें अटकाव मानने पर अंदर आ सकते हैं। मंद शक्ति में, मंद पुरुषार्थ के वश पर्याय में अनेक तरह का विचार चलता है, चिंतन चलता है आत्मा का है। उसमें उल्लास भी होता है क्योंकि स्वरूप का चिंतन है तो महिमा आती है ना, तो उल्लास भी होता है, किंतु ऐसा चिंतन आदि कारण नहीं है बल्कि अटकाव ही है, रुकावट ही है। इस तरह से ज्ञानी को स्पष्ट अपने परिणमन का भान है, ख्याल है। देखो सुगानी जी ने, सुगानी जी को उतना सत्संग नहीं मिला था गुरुदेव का, लेकिन अंतर की सूझ से कैसी कैसी बात की है खुद ने। ये अंदर भीतर की सूझ है, सत्संग इतना नहीं मिला था, बहुत कम आप आए सुनकर, लेकिन ऐसी बात कहां से निकली कि अपने परिणमन से निकाली है, अनुभव से निकाली है। तो गुरुदेव ने ये ग्रंथ जब पढ़ा तो लगा कि बात तो, हमने तो उसको बताई नहीं, सिखाई नहीं, समझाई नहीं, खुद निकालता है, तो बात तो अनुभव सिद्ध है। अनुभव को देखा, ऐसे वचनों से गुरुदेव ने सुगानी जी के अनुभव को देखा। क्या हुआ? जब गुरुदेव ने वो बात को स्पष्ट कर दिया, उसको ज्ञान दशा है, अनुभव दशा हुई थी, तो हमारे कहीं अच्छे अच्छे विद्वानों को वो बात सम्मत नहीं होती थी। नहीं होने का कारण भी वो है कि वो बहुत कम आए थे। गुरु का नाम भी ले लिया मेरे पास, बहुत सरलता से खुल करके मेरे से बात तो होती थी, व्यक्तिगत बात भी कर देते थे, लेकिन हम कभी इस बात को खोलते नहीं थे। उनको भी विश्वास था और उनको भी वो बात पेट में रखनी होती है। तो लाओ द्रव दृष्टि प्रकाश लाओ, ऐसा करके निकाला, अपने रख में से ही निकाला है। साइड में स्वाध्याय में भी एक रैक अंदर में रखते थे, उसमें से निकाला, जैसे अपन रखते थे वैसे रखते थे। तो देखो एक बोल निकाल करके पढ़ने लगे कि जब आचार्यों के शास्त्र एकांत में पढ़ते हैं तो आनंद की बूंद बूंद टपकती है। इनके वचनों में आनंद भरा है ना, तो उसमें से आनंद की बूंद बूंद टपकती है। देखो आचार्यों की या परमागम की वाणी का कितनी महिमा है। और निश्चयाभासी को आनंद नहीं आता, वो शुष्क ज्ञानी होता है। क्या निश्चयाभासी को आगम पढ़ते आनंद नहीं आता? उनको तो शुष्कता बढ़ती है। ये सबूत है कि उनको ज्ञान दशा थी, लेकिन हमारे लोग नहीं मानते। क्या ऐसा बोलने लगे थे? मैंने वो निश्चयाभासी कहने वाले को खुद आर्ग्यूमेंट देते थे हमको, जबकि हमको तो शुरू से मालूम था। तब तो हम संग करते थे और आपस में सत्संग करते थे और ग्रंथ का संकलन भी हाथ में लिया, संपादन भी किया। लेकिन वो जैसे हमको समझाते हैं, जैसे हमको वो बात को प्रूफ देते हैं, इस तरह से बात करते थे। उसी दिन ऐसी बात चली थी। नहीं तो ऐसे दो एक दो और भी एक दो पॉइंट निकाले हैं कि देखो यहाँ भी ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी ऐसे कहते हैं, तो निश्चयाभासी है ही नहीं और अनुभव सिवा ऐसी बात हो ही नहीं सकती। क्या कहते हैं कि अपनी परिणति को स्वयं अंतर्मुख करके स्वरूप की लीनता का प्रयास करता है, पुरुषार्थ चलता है, वो पुरुषार्थ चलता है उसमें। ज्ञानी का ध्यान काल के ऊपर नहीं जाता, अथवा निर्विकलता कब होगी उस पर नहीं जाता, उस पर नहीं होता, होता ही नहीं है। वो तो पुरुषार्थ में लगे हुए बस, पर्याय की चिंता उसको नहीं होती। उसका लक्ष्य अपनी परिणति को न्यारी करके और ज्ञाता धारा की उग्रता करने की ओर होता है। देखो आया जो बात सुगनी जी ने कहा है, वो बात बेंच से कह रही है, आया कि नहीं आया? उसका लक्ष्य अपनी परिणति को न्यारी करके, जो न्यारी परिणति है उसमें भिन्नपना का अनुभव करके, जो ज्ञाता धारा है वो परिणति ज्ञाता धारा रूप है, ज्ञान धारा है, उसमें उग्रता करने की ओर होता है। उसका लक्ष्य तो उग्रता में पुरुषार्थ बढ़ाने में होता है, निर्विकलता तो वो उग्रता का कारण से सहज हो जाएगी। कारण देते हैं, कार्य तो सहज है उसमें, तो वो अपने काम में लगे हैं, पुरुषार्थ के काम में लगे हुए हैं बस। निर्विकल्प दशा कब होगी, ऐसा विकल्प नहीं होता, आता ही नहीं ऐसा विकल्प, इतना वजन है ही नहीं अवस्था पर, इतना वजन है ही नहीं। प्रथम निर्विकल्प दशा वाले को भी निर्विकल्प दशा पर वजन नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन जिसको दूसरा समकित हुआ, स्वरूप का भाव भाषण हुआ, उनको स्वरूप का लक्ष्य और लक्ष्य में आए हुए स्वरूप पर पुरुषार्थ के यत का जोर सहज इतना बढ़ता है, तीव्र होता है, तो कब दशा कब होगी निर्विकलता, निर्विकल्प दशा, उसका विकल्प उसको भी नहीं होता, क्योंकि उसका वजन ही छूट जाता है। अवस्था में क्या चलता है, कैसा चलता है, वो ख्याल में तो सह जाता है लेकिन वजन नहीं जाता। यथार्थ कार्य पद्धति और उसका रस उतना उसको खींचता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कोई छरी चाकू को धार निकालते हैं, सराहन पर या पत्थर पर घिसते हैं, एमरी स्टोन पर घिसते हैं, घिसते हैं या सराहन पर घिसते हैं, घिसते हैं, कुछ जोर कहाँ लगाते हैं जब घिसते हैं ना, फिर तलाश होती है कभी कभी, दो चार छह दफे घिस लिया, फिर तलाश होती है कि धार निकली कि नहीं निकली, निकली तो कितनी निकली है, वहां जोर नहीं दिया जाता। धार को देखने में जोर नहीं दिया जाता, अगर वहां जोर देते तो उंगली कट जाए। ऐसे सहज मालूम पड़ता है कि पुरुषार्थ से दिशा आगे बढ़ रही है लेकिन वहां जोर नहीं आता, वहां वजन नहीं जाता, वजन जाता है स्वरूप पर, मैं ये हूं, ये मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसा भीतर में जोर जाता है स्वरूप पर, उसकी धुन चलती है, दशा को नहीं देखते, वो तो शायद मालूम होती है क्योंकि ये स्वरूप है वो गहराई में है, दशा ऊपर ऊपर है, तो जिसको अंदर की मालूम है उसको ऊपर की तो मालूम शायद होती ही है, उसमें क्या देखने की बात है, उसमें वजन देने की क्या बात है। वह तो अपनी परिणति को न्यारी करता जाता है, भिन्नता करते ही जाता है, भिन्नता करते ही भेद ज्ञान का पुरुषार्थ सविकल्प दशा में चालू ही रहता है। उस न्यारी परिणति में सहज धारा उभरने पर, उभरने को उग्रता आने को निर्विकल्प दशा होती है, सहज हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, सहज हो जाती है। यानी जिसको निर्विकल्प दशा आती है उसको उस दशा के पहले के क्षणों में उस दिशा का विकल्प नहीं होता, अगर उस दिशा का विकल्प होता तो वो दशा नहीं आती, उतना भी लक्ष्य जाता तो
विकल्प तो मन
में, मतलब विकल्प का उत्थान ही पुरुषार्थ की मंदता को दिखाता है, वो तो अटकाव है, रुकावट है। उग्रता पुरुषार्थ की है तो एकाकार उपयोग हो जाता है, वो निर्विकल्प दशा है, पुरुषार्थ की मंदता है तो उपयोग बाहर निकल जाता है। निर्विकल्प दशा में से भी सविकल्प में आता है कि नहीं, सहज तुम्हारा कहाँ विकल्प है कि विकल्प में आऊ मैं, लेकिन पुरुषार्थ की मंदता होती है उपयोग बाहर, पुरुषार्थ की उग्रता होती है उपयोग अंदर। ये मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ के आधार पर ही चलता है, मोक्ष मार्ग में मुख्य भूमिका, मेन रोल पुरुषार्थ का है, क्योंकि श्रद्धा में तो पूरा स्वरूप का ग्रास कर लिया है, ज्ञान में भी स्वरूप है। अब जो चारित्र में स्वविकल्प और निर्विकल्पता है वो पुरुषार्थ के कारण से है। पुरुषार्थ मंद है तो शुभोपयोग, पुरुषार्थ तीव्र है तो शुभोपयोग। बस, और पुरुषार्थ का स्वरूप भी करूं 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 ऐसा नहीं है, वो तो पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। सहज वीर्य गुण के परिणमन चलना वो पुरुषार्थ का स्वरूप है। सहज चलना वही स्वरूप है इसका। करूं 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 ऐसा लाख प्रयत्न करे तो नहीं होगा। इसलिए राजमल जी ने कलश टीका में चौथे कलश के अंत में दिया है, लिखा है कि सम्यक्त्व प्रयत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। प्रयत्न साध्य नहीं है, मैंने करूं करूं के प्रयत्न वाला साध्य नहीं है, वो ऐसे नहीं आएगा। वो हुआ 313। तो उसमें बात तो हुई कि सहजता कैसी होती है, पुरुषार्थ की भी सहजता और विकल्प निर्विकल्प दशा की भी सहजता कैसी होती है। 314, आप किसके बल पर कहते थे कि सम्यक दर्शन इतना दूर है, इतना दूर है, क्या है? वो एक प्रसिद्ध घटना है बैंस की मुमुक्षु दशा का, कि हिम्मत भाई और वो दोनों भाई बहन इस विषय में परिचय में रहते थे, तो कभी कभी वो पूछ लेते थे कि तुम्हारा सम्यक दर्शन कितना दूर है। उनको मालूम था कि पुरुषार्थ में लगी हुई है, कहीं भी इसका चित नहीं लगता, तो कितना दूर है वो कभी पूछते थे। तो पहले बताते थे कि इतना दूर है, फिर बोले इतना दूर है, फिर इतना दूर है, ऐसा कभी कभी बात चली है। मैंने हम समीप जा रहे हैं वो उनको पूरा ख्याल है। और इसका मतलब कुछ होता है तो उतना होता है कि कभी कभी मुमुक्षु को अपनी भूमिका में, जब अपने स्वरूप प्रति की रुचि बढ़ जाती है, तब स्वरूप प्राप्ति आसान दिखती है, समीप दिखती है, ऐसा भास आ जाता है। क्या ऐसा भास आता है कि अब मेरे को हो जाएगा काम, अब मेरे को सम्यक्त्व स्वानुभव हो जाएगा, ऐसा उनको उसके आत्मा अंदर से उस प्रकार का उसको रिस्पॉन्स देती है, तो उसको भास आता है, पता चल जाता है। हाँ, जैसे एक घंटे में 10 इंच पानी गिरने वाला बारिश बरसात होता है, तो अगले घंटे में ठंडी हवा बहुत हो जाती है, तीव्र धूप होता है इन दिनों में वैशाख जेठ मास का, तो हवा बदल जाती है। ऐसे भीतर की परिस्थिति बदलते हुए पता चल जाता है। ऐसा पता बेंसरे को भी चल गया था, वो बात। तो किसी ने प्रश्न पूछा है कि आप किस तरह से वो कह सकते थे, आपके पास ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके आधार से बल पर मैंने जिसके आधार से आप कह सकते थे कि मेरा सम्यक दर्शन अभी दूर नहीं है। समाधान, नायक के बल पर कहते थे, नायक के जोर से कहा जाता था, अपना जो पुरुषार्थ चलता था उस पुरुषार्थ के आधार से वो बात कही जाती थी, मतलब विश्वास भी आ जाता है क्या अपने परिणमन पर, यथार्थ कार्य पद्धति और यथार्थ पुरुषार्थ की दिशा आ गई तो उसमें शंका नहीं होती। वास्तव में तो निशंकता का प्रारंभ पदार्थ निर्णय से होता है, वह वासन से। इसलिए कृपालु देव ने पदार्थ निर्णय की जो 254 में बात की है उस पत्र का हेडिंग भी ऐसा लिया है कि निशंकता से निर्भयता होती है। निशंकता की बात यह पदार्थ निर्णय से, पदार्थ निर्णय से निशंकता आती है, निशंकता से निर्भयता होती है, निर्भयता से निशंकता होती है, मैंने असंग दशा मैंने निर्विकल्प दशा हो जाती है। तो जिसको स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ चलता हो उसको नायक का जोर है, पुरुषार्थ है, बल है, तो उस पर से मालूम पड़ जाता है। नायक के जोर से ऐसा लगता था कि सम्यक्त्व निकट है, अनुभव दशा निकट है, ऐसा लगता था। वो भी वो पूछते थे तो बताते थे, वरना उतना वजन नहीं जाए, वरना उतना वजन नहीं जाए, लेकिन वो आपस में आत्मीयता थी, वो पूछते थे तो वो बता देते थे, उतने से बात है। यह परिणति ऐसी है कि अंत तक पहुंचकर ही रहेगी क्या ठेठ सुधी पहुंचे जैसे जोर उपड़ी छे ए पंचा वगर हमें क्या थंभेगी नहीं, परिणति मेरा पुरुषार्थ कहीं थंभेगा नहीं, बीच में अटक जाएगा ऐसा नहीं, जोर से आया है अंदर से। यह पुरुषार्थ धारा ऐसी है कि अंत तक जरूर पहुंचेगी, ठेठ सुधी पहुंचे जैसे हमें बच्चे अटके थाके फिर पड़े वो बनने वाला नहीं है। हाँ वो बात उस ढंग से रखे थे। सुगानी जी के विषय में गुरुदेव को कुछ संकेत देने का एक प्रसंग था मेरा, तो इस तरह से वो बात रखे। एक आजकल हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा में बैठते हैं, इनकी जो बात है गुजराती में बात करते नहीं, इनकी बात ठेठ थी आवे से, अंदर में ठेठ थी आवे से, इस शब्द में वायप्र गुरुदेव थोड़ा गंभीर थी गया, એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો સિદ્ધ જેમ કીધું, આપની કૃપા છે, કૃપા થઈ છે એવું લાગે છે, એમના આત્મા ઉપર આપની કૃપા થઈ હોય એવું લાગે છે, સ્પષ્ટ કહી દીધું એટલું પછી પૂછ્યું એટલે કીધું, પછી એકદમ ગંભીર થઈ ગયા, નીચું જોઈને થોડા વિચારમાં રોકાઈ ગયા, ક્યાં કોક અમે બે એકલા જતા બાર પાટે બેઠા હતા સાંજે જેમા, પછી કુદરતી કોઈ નહોતું એટલે મોકો દઈને વાત કરી, એમાં કોઈ વૃદ્ધ માણસ આવી ગયા, એને ચરણ સ્પર્શ કર્યા, તરત એમનું ધ્યાન ગયું,
વિચારમાં હતા ચરણ સ્પર્શ થયા, હાથે પડેડ્યો, તરત એમનું ધ્યાન ગયું. આમ એમને સામું જોયું એટલે જે આવેલા હતા, ડોસા હતા, પાઘડી ભાગડી પહેરી હતી, કોણ હતું મને યાદ નથી, એમણે તરત જ ગુરુદેવને કંઈક પૂછ્યું કે વાત શરૂ કરી. ગુરુદેવ એમની સાથે વાતમાં જોડાણા, બધું જે વિચાર કરતા હતા એ પલટાઈ ગયો ઉપયોગ. અને એ વાત થોડી લંબાણી લંબાણી, એમાં બે પાંચ જણા બીજા આવી ગયા, કારણ કે સાંજે બધા પાંચ સાત પંદર જણા બેસતા એમની પાસે, પણ શરૂઆતમાં કોક જ હોય, પછી બધા જમી જમીને આવી જાય, બધા જમવા જાય, પોતાના ચક્કર લગાવતા હોય ત્યારે બધા જમી આવે છે, અને આવું હોય આવી જાય. પછી તો પાંચ સાત જણા આવી ગયા એટલે પછી આ વિશે ચર્ચવાનો કાંઈ મોકો હતો નહીં. અને હું તો જમવા નહોતો ગયો, વાત કરવા માટે જ રોકાણ હતો, એકાંત ગોતતો હતો, એકાંતને તક મળી ગઈ. પછી હું નીકળી ગયો ત્યાંથી ઉઠીને. પણ તે દિવસે એમણે રાત્રે રાત્રિ ચર્ચામાં સુગાનીજીને સંબોધન કર્યું નિયમસારની 50મી ગાથા લઈને. દેખો, પરદ્રવ્ય કે આશ્રય સે રાગ હોતા હૈ ઇસલિયે વો હૈ હૈ, વિકલ્પ કે આશ્રય સે ભી રાગ હોતા હૈ ઇસલિયે વો ભી હૈ હૈ, એસે સાયિક ભાવ કે આશ્રય સે ભી રાગ હોતા હૈ, કેવલ જ્ઞાન કે પર્યાય તો ભી હૈ નહીં લેકિન ઉત્સાહિક પર્યાય, અભી વિકલ્પ મેં ઉસકા આશ્રય કરે તો ઉસસે ભી રાગ ઇસલિયે વો ભી હૈ હૈ, એસા નિયમ સાર કે 50મી ગાથા મેં કહેતે હૈ આચાર્યશ્રી ક્યો નિહાલ ભાઈ એસા કરકે સંબોધન કિયા. તો કુછ વો ચર્ચા નિકાલ, આઉટ ઓફ ટ્રેક સબ્જેક્ટ નિકાલા, બાત દૂસરી ચલ રહી થી, ઉસમે સે ઉન્હોને ખુદને યે બાત નિકાલ કરકે સુગાની જી કો આઉટ ઓફ વે સંબોધન કર દિયા. કુછ ચર્ચા કરને કા વિકલ્પ હોગા, સુગાની જી ભી કુછ બોલતે તો આઉટ હો જાતે સમૂહ કે બીચ મેં, લેકિન બોલને કા ભાવ ભી હુઆ પીછે સે બતાયા. લેકિન ઉનકા ધ્યાન ગયા કે અગલ બગલ મેં જો વિદ્વત લોગ બેઠે હૈ યહાં કે પ્રમુખ લોગ, ઉનકે ઇજ્જત કા સવાલ હો જાયેગા, એ લોગ ઇતને સાલ સે બેઠે હૈ ઇસ દશા કો નહીં પાએ ઓર મેં આઉટ હો જાઉંગા તો થોડા ઇન લોગો કે લિયે અચ્છા નહીં રહેગા. વિકલ્પ આ ગયા, બોલ રહે બોલે નહીં કુછ, વો બાત ઉન્હોને બાદ મેં બતાઈ. ચર્ચા ક્યા આ તો ગુરુદેવ કુછ ચર્ચા કરના ચાહતે થે, આપ કુછ બોલે નહીં, આપકો બોલના જરૂરી થા, એસા મોકા નહીં આતા હૈ, તો મેં બોલતા ભી લેકિન મેરા વિકલ્પ ઉધર ગયા, ફિર મેરી વૃત્તિ સંકોચ હો ગયા બોલને કા, મેં નહીં બોલા. ચલો હુઆ સો હુઆ, ઉસી દિન હુઆ થા, શામ કો હમને બોલા થા, રાત્રે કો યે ઘટના ચલી થી. વો આધાર તો વો હૈ, કોઈ નિશ્ચિત નહીં લગતા થા, ઓર એસી કોઈ ખબર ભી નહીં થી, તો નિશ્ચિત હોતે નહીં, ખબર હોતી ભી નહીં, ધ્યાન જાતા ભી નહીં, પરંતુ નાયક કી અંતર ઉગ્રતા સે અપની ભાવના સે, ઉગ્રતા સે અપની ભાવના સે, ભાવના કે બલ સે, પુરુષાર્થ કે બલ સે કહેતી થી કે અભી હમારા સમ્યક્ત્વ અનુભવ નિકટ હૈ. યહાં તક રખે. તીન સો બાર કા તો આશય ઉતના હી હૈ, માર્ગ કે લીએ તડપન હોતી હૈ તબહી માર્ગ મિલતા હૈ, ઇસકે પહેલે કિસી કો માર્ગ મિલા નહીં, और मिलेगा भी नहीं। तीन सौ तेरह का आशय उतना ही है। ज्ञानी को निर्विकल दशा का कारण सहज पुरुषार्थ की उग्रता पर है। निर्विकल दशा का विकल्प तो रुकावट का कारण है, स्वयं रुकावट रूप है, रुकावट का कारण है, स्वयं रुकावट रूप है। ऐसा जानकर मुमुक्षु को निर्विकल दशारूप पर्याय पर का भजन नहीं रखना चाहिए। निर्विकल दशा रूप पर्याय पर भजन नहीं रखना चाहिए। तो सोचो मत व्यक्तिगत बात प्रसंग
Good.